है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम की पुस्तक में से मरकुस रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको लाभ मिल रहा है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई के विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
जाए प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले अध्ययन में हमने मरकुस रचित सुसमाचार के परिचय को देखा था और आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 1 से आरंभ करेंगे और इस अध्ययन में हम उन मुख्य बातों को सीखेंगे जिसे मरकुस हमें बताना चाहते हैं। मित्रों, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 में इतने अधिक विषय हैं जितने शायद बाइबल में किसी और अध्याय में नहीं है। उत्पत्ति 1 अध्याय के साथ तुलना कीजिए तो हम इसे पाते हैं। अध्याय 1 में मरकुस, यशाया और मलाकी की भविष्यवाणियों का संदर्भ देने के पश्चात यहोना बपतिस्मा देने वाले की सेवा का उल्लेख करता है। वह यीशु के प्रथम वर्ष की सेवा का वर्णन भी करता है और सप्त के दिन की व्यवस्था में वह यीशु के कार्यों को भी दर्शाता है और अंत में वह एक कोढ़ी की चंगाई के चमत्कार से अध्याय का अंत करता है। ऐसे व्यस्त जीवन के दबाव के उपरांत यीशु प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं। अनेक विषयों से पूर्ण यह अध्याय मती के अनुरूप यीशु की वंशावली न लिखने के कारण अलग ही दिखाई देता है, जिसका कारण हम आरंभ में देख चुके हैं। वंशावली राजाओं के लिए आवश्यक होती है, सेवक को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, जनपत्र की भी नहीं। यहां मुद्दा उसके पूर्वजों का नहीं, उसके कार्यों का है। मित्रों, क्या वह काम कर सकता है? यहोवा का सेवक यहां अपनी उपलब्धियों द्वारा पहचाना जाता है। इसके अतिरिक्त रोमियो और अन्य जातियों को यीशु की वंशावली से कोई सरोकार नहीं, अर्थात कोई लेना देना नहीं है, चाहे वह अब्राहम तक ही क्यों न हो। अब जब हम इस सुसमाचार पर मनन करने जा रहे हैं तो हम परमेश्वर से याचना करें कि वह हमें यीशु के साथ जीवंत संबंध में लाए। आइए हम मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 1-3 पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। जैसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। मित्रों, ध्यान रखें कि यह न तो यीशु के जीवन का आरंभ है और न ही यूहन्ना के। यह उस सुसमाचार का आरंभ है जिसमें प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आया और क्रूस पर मर गया तथा फिर जीवित हुआ। मेरे मित्रों, यही सुसमाचार है। धर्मशास्त्र में 3 आरंभों का उल्लेख है, तो आइए हम इन्हें समय के क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है, आदि में वचन था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 पद। यह अतीत में वहां तक जाता है जो तिथि रहित आरंभ है। संपूर्ण समय का आरंभ इसे मानवीय मस्तिष्क के समझने का प्रयास ही कर सकता है। यह समय की अपेक्षा तर्क की बात है, क्योंकि मेरे विचार में मुझे कुछ भी समझने के लिए समय में ही कहीं न कहीं अतीत में पांव जमाने होंगे। यदि मैं हवा में उड़ता हवाई जहाज देखता हूँ तो मैं यह मानता हूँ कि कहीं तो हवाई अड्डा होगा जिसे मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, परंतु मैं यह अवश्य जानता हूँ कि हवाई जहाज कहीं से तो उड़ा है। और इसी प्रकार जब मैं जगत को देखता हूँ तो निश्चय ही जानता हूँ कि वह कहीं न कहीं से आया है और उसी कहीं पर परमेश्वर है, परंतु मैं आरंभ के बारे में कुछ नहीं जानता। परमेश्वर इस अनादि से निकल कर आता है कि हमसे भेंट करे। मित्रों, मैं अतीत के बारे में जितना अधिक सोच सकता हूँ उससे पहले परमेश्वर था। दूसरा, हम देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद। यहाँ पर अनादि समय में निकलकर समय में प्रवेश करते हैं। यद्यपि अनेक विद्वान इस जगत की जन्म तिथि खोजने का प्रयास कर रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं जानता है। और तीसरी बात हम पाते हैं, सुसमाचार का आरंभ, मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 पद। इसका अर्थ ठीक वही है जो यूहन्ना 1 अध्याय के 1 में लिखा है, आदि से था। यह आदि वह समय है जिस क्षण मसीह यीशु ने देह धारण किया था। मसीह यीशु ही तो सुसमाचार है। मित्रों, मरकुस के सुसमाचार में पुराने नियम के संदर्भ बहुत कम है, परंतु फिर भी वह 2 भविष्यवाणियों का संदर्भ देता है, क्योंकि रोम वासियों को पुराने नियम का ज्ञान नहीं था। मरकुस का उद्देश्य यह दिखाना था कि जिस मनुष्य की वह चर्चा कर रहा है उसे वंशावली सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो केवल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इस कारण मरकुस यह दर्शाता है कि उसके प्रमाण समय पूर्व से ही उपस्थित हैं, जो यशाया और मलाकी की भविष्यवाणियों में पाए जाते हैं। यहुन्ना और मरकुस दोनों यही प्रमाणित करते हैं कि यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला का आगमन मसीह के अग्रदूत की भविष्यवाणी को पूरा करता है। मित्रों, हम मरकुस एक अध्याय उसके चार पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, यहुन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। मित्रों, मैं शब्दों को पुनः व्यवस्थित करना चाहता हूँ जिससे समझने में आसानी हो। यहुन्ना ने मन फिराव का प्रचार किया और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा दिया, पापों की क्षमा का नहीं। यूनानी भाषा के नए नियम में पापों की क्षमा के साथ जो संबंध सूचक अव्यय काम में लिया गया है वह है आइस, जिसका अर्थ है के लिए। उसकी सेवा तैयारी करवाने की थी। वह मनुष्य को संसार में मसीह के आगमन के लिए तैयार कर रहा था। मसीह यीशु ही है जो पापों को क्षमा करता है। तब हम मार्कुस एक अध्याय उसके 5 और 6 पद में पढ़ते हैं, और सारे यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यहुना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का पटका बांधे रहता था और टिड्डियां और वन मधु खाया करता था। मित्रों, यहुना बपतिस्मा देने वाला एक असाधारण मनुष्य था, अपने संदेश में ही नहीं परंतु अपनी वेशभूषा और भोजन में भी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो सेवा के लिए अलग किया गया था। वह याजकों के क्रम का था, एक लेवी, और उसका उत्तरदायित्व मंदिर में सेवा करना था, परंतु परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता होने के लिए बुला लिया था। वह निर्जन स्थान में प्रचार करता था, लोग उसके प्रचार को सुनने के लिए आते थे। आज हम आराधनालय बस्तियों के मध्य बनाते हैं या ऐसे स्थान पर जहां लोग आसानी से एकत्र हो पाए। हम सोचते हैं कि आराधनालय हमारी पहुंच में होना चाहिए। यहुन्ना इस सिद्धांत पर काम नहीं करता था। वह तो दूर निर्जन स्थान में था और मनुष्यों की भीड़ उससे सुनने के लिए वहां जाती थी। तब हम मार्कुस 1 अध्याय के 7 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और यह प्रचार करता था कि मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मित्रों, इस पद में प्रकट होता है कि वह कैसा व्यक्ति था। उसने श्रोताओं को उत्तेजित कर दिया। वह एक असामान्य कठोर पुरुष था। उसका प्रचार उसकी एकल वाणी थी। इस पद में उसकी नम्रता पर ध्यान दीजिए। वह एक दीन व्यक्ति था। मरकुस 1 अध्याय के 8 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मित्रों, यीशु और यूहन्ना में यह एक महान अंतर था। वास्तविक बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। सांसारिक बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा होता है। आज पानी का बपतिस्मा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एक गवाही होती है। मत्ती के सुसमाचार में हमें समझाया गया है कि यीशु ने पानी में बपतिस्मा इसलिए लिया था कि वह मनुष्यों के साथ अपनी पहचान बनाए। तब हम मार्कुस 1 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यहुन्ना से बपतिस्मा लिया। आप देखिए मार्कुस कैसे यीशु का आगमन दर्शाता है, कैसे आनंद की बात है कि यीशु आया। यीशु एक दिन फिर आएगा। यहाँ यीशु नासरत के 30 वर्षीय शांत प्रशिक्षण के पश्चात अज्ञातवश से निकलकर आता है और बपतिस्मा लेने के द्वारा मानव जाति से अपनी पहचान बनाता है। आपको ध्यान होगा कि यीशु ने यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा था, अब तो ऐसा ही होने दे, जिसे हम मत्ती 3 अध्याय के 15 पद में पाते हैं, क्योंकि यहुन्ना के विचार में यीशु को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं थी। यहां ध्यान दीजिए कि मरकुस मसीह के लिए अधिकतर यीशु शब्द काम में ले रहा है क्योंकि यह उसका नाम है। मरकुस 1 अध्याय उसके 10 और 11 पद में लिखा है, और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। मित्रों, यहां पर हम परमेश्वर के त्रिएकत्व को अति स्पष्ट रूप से देखते हैं। हम परमेश्वर के द्वितीय पुरुष प्रभु यीशु को देखते हैं, परमेश्वर के आत्मा को देखते हैं जो कबूतर के रूप में उतर रहा है। आत्मा ईश्वरत्व का तीसरा पुरुष है और स्वर्ग से वाणी सुनाई देती है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। मित्रों, यह ईश्वरत्व के प्रथम पुरुष पिता परमेश्वर की वाणी है। इस प्रकार त्रिएक परमेश्वर हमारे सामने प्रकट है। यह यीशु के मनुष्यत्व और समर्पण पर स्वर्गिक मुहर है। आप यहां देखेंगे कि घटनाओं का क्रम बहुत तेजी से चल रहा है। वह एक सेवक है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो बपतिस्मा देने वाला है उसका परिचय कराता है और परमेश्वर पिता उसे प्रमाणित करके मुहर लगाता है। इसके बाद परीक्षा उसका दीक्षांत करती है। मरकुस 1:12 में हम पढ़ते हैं, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। तुरंत भेजा, मित्रों, इन शब्दों में हम देखते हैं कि एक तीव्र बल ने उसे जंगल में भेजा। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां फिर वही प्रश्न आता है, क्या वह उस कार्य को कर सकता है? अब तक सब चूक गए हैं, कोई भी परीक्षा में दृढ़ खड़ा ना रह पाया। आदम चूक गया था, नूह बाढ़ से तो निकल आया था परंतु आगे चलकर मुंह के बल गिरा था। हमने देखा कि अब्राहम भी चूक गया था, मूसा से भी चूक हुई थी। वह इसराइल वंशियों को मिस्र से निकालकर प्रतिज्ञा के देश तक ले आया था परंतु उसमें स्वयं प्रवेश नहीं कर पाया था। राजा दाऊद भी चूक गया था। अतः हम देखते हैं कि परीक्षा ने उसका दीक्षांत किया। मित्रों, मरकुस 1:13 में लिखा है, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। यहाँ हमारे पास वह सब विवरण नहीं है जो मत्ती और लूका के सुसमाचार में दिए गए हैं। वह 40 दिन जंगल में रहा और शैतान उसकी परीक्षा लेता रहा। कुछ लोग सोचते हैं कि वह 40 दिन भूखा रहा, उसके बाद शैतान ने उसकी परीक्षा ली। जी नहीं, शैतान 40 दिन तक उसकी परीक्षा लेता रहा। मेरे मित्रों, शैतान हर समय उसकी परीक्षा ले रहा था। कुछ लोगों के विचार में वह जंगल में वन पशुओं के साथ था, अर्थात वन पशु भी परीक्षा में शैतान का साथ दे रहे थे। जी नहीं, वन पशु और स्वर्गदूत उसकी सेवा कर रहे थे। वन पशु सृष्टि का एक भाग है जिन्हें मनुष्य के अधीन रखा गया है। आपको ध्यान होगा कि हमने उत्पत्ति में देखा था कि सृष्टि की रचना मनुष्य के लिए घर बनाने की तैयारी थी। हम जो जानते हैं उसके अनुसार पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां मनुष्य और मनुष्य के निवास के लिए यही एकमात्र उपयुक्त ग्रह है। यह मरकुस के कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य से कम पशु और मनुष्य से बढ़कर स्वर्गदूत दोनों उसकी सेवा कर रहे थे। तब हम मरकुस 1:14-15 में पढ़ते हैं, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मित्रों, परीक्षा के बाद हम देखते हैं कि यीशु ने अपनी सेवा आरंभ की। यहाँ ध्यान दीजिए कि मरकुस एक बार फिर यीशु के आगमन पर बल दे रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बंदी बनाए जाने के बाद यीशु गलील क्षेत्र में आया और अपनी सेवा आरंभ की। वह परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था और इस प्रकार से उसने आरंभ किया, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मित्रों, मेरे विचार में यह ऐसे होने वाला था, अर्थात ऐसा होना था। परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा था और वह कह रहा था, समय पूरा हुआ है। मित्रों, परमेश्वर का सुसमाचार है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मत्ती के सुसमाचार में लिखा है स्वर्ग का राज्य। तो क्या इन दोनों में अंतर है? जी हाँ है, और एक दूसरे के ऊपर है। स्वर्ग का राज्य है और पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य, और परमेश्वर के राज्य का अर्थ है संपूर्ण जगत पर परमेश्वर का राज्य। जहां तक पृथ्वी का प्रश्न है, हम कह सकते हैं स्वर्ग का राज्य निकट है या परमेश्वर का राज्य निकट है। दोनों एक दूसरे के पर्याय वाक्य हैं, परंतु परमेश्वर का राज्य पृथ्वी से भी विस्तृत है। मित्रों, यीशु का संदेश वैसा ही है जैसा मत्ती के सुसमाचार में यूहन्ना का संदेश था कि मन फिराओ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज संदेश विपरीत कर दिया गया है, अर्थात हम मन फिराव से पहले विश्वास को रखते हैं। जब आप मसीह यीशु की ओर विश्वास में फिर आते हैं तो आप किसी और बात से मन फिरा लेते हैं। किसी और बात से फिर जाना मन फिराव है। मित्रों, यदि किसी बात से मन फिराना ना होता, या ना हो तो मसीह की ओर फिरना वास्तविक नहीं है। यह सच है कि यदि कोई मसीह की ओर वास्तव में मन फिराता है तो उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा और वह किसी बात से मन फिराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य सुसमाचार में विश्वास करे। यहां गतिविधियां बहुत तेज हो रही हैं। स्मरण रखें कि यह सुसमाचार रोमवासियों के लिए लिखा गया था जो कर्मठ जन थे। वे अधिकतर संपन्न पुरुष थे, अर्थात मनुष्य थे जो संसार पर राज कर रहे थे। मत्ती का सुसमाचार धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्यों के लिए था और मार्कुस कठोर लोगों के लिए और लूका का सुसमाचार विद्वानों के लिए तथा यहूना अभागों के लिए जिन्हें उद्धार पाने की आवश्यकता थी। मित्रों, ये चारों सुसमाचार अपने स्थान में बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये चारों सुसमाचार अलग अलग लोगों को लिखे गए हैं ताकि उन तक प्रभु यीशु मसीह का वचन सही रूप में पहुंचाया जा सके। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब हमने इस अध्ययन को आरंभ किया है तो निश्चय ही हम कुछ मुख्य और विशेष बातों को आने वाले समय में देखने पाएंगे। जिस प्रकार से आज हमने इस बात को जान लिया है कि मरकुस का लेखक हमें इस बात को बताने का प्रयत्न कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह एक सेवक है, अर्थात तो रोमियो को इसकी सूचना देते हैं और उन्हें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का दास था और इसके माध्यम से उनके बीच में सुसमाचार को बताते हैं। आज आपके लिए और मेरे लिए भी प्रभु यीशु मसीह बहुत महत्वपूर्ण है और वो चाहते हैं कि आप और मैं भी अपने मनों को फिराएं और वास्तव में उस पर विश्वास करें। आइए हम उस परमेश्वर के निकटता में आएं और अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर शाम की घड़ी के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि प्रभु हम आपके जीवित वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से करने पाए हैं। प्रभु, जब आज हमने मरकुस रचित सुसमाचार के पहले अध्याय से अध्ययन किया है, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें से प्रत्येक के जीवन से अपने वचन के द्वारा निरंतर बातचीत कीजिए, हमारे मनों को भी फिराइए ताकि हम उन संसार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से और हरेक प्रकार की बुरी बातों से फिर कर आपकी ओर आ सकें, आप पर विश्वास कर सकें और इस बात को जानने पाएं कि आप हमारे उद्धार करता है, आप हमारे पापों को क्षमा करने वाले हैं, आप हमारे रोगों से हमें आजाद करने वाले हैं, आप हमें शांति देने वाले हैं, आप शांति के राजकुमार हैं। हाँ, हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना हमारे प्रत्येक श्रोताओं के लिए कि आप एक एक को आशीषित कीजिए, विशेष करके जो चिंतित हैं, दुखी हैं, परेशानी हालत में हैं, चिंताओं में हैं और किसी न किसी रूप में कुछ लोग अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। प्रभु, आप उनसे बातचीत करें ताकि वे जानने पाएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी जरूरतों को समझते हैं। चाहे हमारे जवान भाई बहन हो, चाहे हमारे बुजुर्ग माता पिता हो, प्रभु आप प्रत्येक को आशीषित कीजिए। इस समय हम फिर से एक बार हरेक श्रोता भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आप निरंतर हम सबके साथ होइए और अपनी आशीषों की परिपूर्णता में बनाए रखिए। हम आपके शांति को मांगते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr sbs.com.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
समय था पापी था जीवन।